नमस्कार, मैं सौरभ डीएनए में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डीएनए की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करेंगे जो हमारे समाज के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, हमारे देश की सियासत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं आज राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 वर्ष की एक बच्ची को जलाकर मार दिया गया। आशंका है कि हथियारों ने पहले उसके साथ गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे भट्टी में झोंक दिया। ये खबर बेहद डरावनी है और इसीलिए आज आपको महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मुद्दे पर सियासत की नहीं, सबके साथ आने की जरूरत है। इसके बाद हम ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का साइंटिफिक डीएनए टेस्ट करेंगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एएसआई सर्वे की इजाजत मिलने के बाद हिंदू पक्ष खुशी जता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष निराश नजर आ रहा है। लेकिन हम हाईकोर्ट के इस फैसले का बिना किसी भावनाओं में भय निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और सिर्फ इस फैसले से जुड़े फैक्ट आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि अब इस फैसले के बाद अगर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा तो कैसे होगा और इस सर्वे के जरिए कौन कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके बाद हम आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पहली बार भारत में हींग की खेती हो रही है। हींग एक ऐसा मसाला है जिसे घर घर में यूज किया जाता है। हींग खाने का स्वाद और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हींग की खपत भारत में होती है, इसके बावजूद भारत हींग की पैदावार नहीं करता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती हो रही है। इस गुड न्यूज के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, तब से एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है मणिपुर। 19 जुलाई को मणिपुर से महिलाओं के साथ बदसलूकी और हैवानियत का जो वीडियो सामने आया, उसने हर किसी की आत्मा को झकझोर दिया। और एक संवेदनशील इंसान होने के नाते ये जरूरी भी है कि हम ऐसी घटनाओं से ना सिर्फ प्रभावित हों बल्कि इनका विरोध भी करें। इस वीडियो पर जमकर सियासत भी हुई है। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हंगामे से नेताओं की सियासत भले ही चमक रही हो, लेकिन महिलाओं का उससे कोई भला नहीं हो रहा। ना तो उनके साथ होने वाली हैवानियत रुक रही है और ना ही उनके खिलाफ होने वाले अपराध। राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची को कोयला भट्टी में जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आशंका है कि हैवानों ने पहले उसके साथ गैंगरेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे कोयला बनाने वाली एक भट्टी में जिंदा जला दिया। आग में बच्ची का पूरा शरीर जलकर कोयला बन गया, सिर्फ उसके पैर का एक कड़ा रह गया और राख में मिले चांदी के इस कड़े से ही पूरे मामले का खुलासा हुआ। यह उस राजस्थान की कहानी है जो रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर वन है, लेकिन शायद ये आंकड़े और भीलवाड़ा की ये तस्वीरें गहलोत सरकार को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि भीलवाड़ा की ये तस्वीरें उनके सियासी एजेंडे में फिट नहीं बैठती। लेकिन हमने इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की है और हमारी ये रिपोर्ट सेलेक्टिव अप्रोच रखने वाले उन नेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए जिनके लिए रेप और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध सियासी मुद्दों से ज्यादा और कुछ नहीं।
जंगल में जल रही भट्टियों की इन तस्वीरों में पहली नजर में आपको कुछ भी अलग या असामान्य नहीं लगेगा, लेकिन ये भट्टी एक ऐसे हादसे की गवाह है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठी। इस भट्टी में 14 वर्ष की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये बच्ची बुधवार सुबह 8 बजे बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गई थी। देर शाम तक भी जब बच्ची नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बच्ची की तलाश में जब ग्रामीण जंगल में पहुंचे तो उन्हें कोयला बनाने वाली एक भट्टी जलती नजर आई। बारिश के सीजन में आमतौर पर ये भट्टियां बंद रहती। शक होने पर जब ग्रामीण भट्टी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां बच्ची की चप्पलें नजर आईं। यही नहीं, राख के ढेर में चांदी का एक कड़ा और हड्डियों के टुकड़े में। ये वही कड़ा था जिसे बच्ची ने अपने पैरों में पहना।
कौन थे वो लोग?
मकान में लिया था जो जो चार दिना पांच दिना मोटो का नाम तीन ना का चढ़ू एक दो काले एक संजीव एक कन्नो दूजा का नाम दो लुगाया ये दो छोरा छोरिया।
शक होने पर ग्रामीणों ने रात में ही कुछ आरोपियों को पकड़ लिया जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया।
प्रथम दृष्टया मामला ऐसा बन रहा है कि बच्ची को मार के जलाने का ये घटनाक्रम रहा है और संगीन अपराध है। कुछ जो जिन लोग पे शक था उन लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इस जघन्य अपराध में सख्त सजा दिलवा दी।
परिजनों ने हत्या से पहले बच्ची के साथ गैंगरेप की आशंका भी जताई। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिए। बाद में पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हथियारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना से जुड़े सबूत जुटा।
देखिए, गैंगरेप की घटना का जो फाइनल डिसीजन है वो FSL और हमारे जो डॉक्टर मुआयना है उसके बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन दे पाएंगे, लेकिन इस गैंगरेप की घटना को नकारा भी नहीं जा सकता, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
पुलिस ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप भी सहम गए होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। अब हम आपको रिपोर्ट से ही जुड़े एक और सच दिखाएंगे और ये सच सियासत के पर्दे से ढका नहीं जा सकता। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में पूरे देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 6,377 मामले तो सिर्फ राजस्थान में सामने आए थे। इसमें भी 1,453 मामले ऐसे थे जिसमें पीड़िता नाबालिग थी। रेप के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां बलात्कार के 2,947 मामले दर्ज किए गए। वहीं वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 2,845 मामले सामने आए थे, जबकि इसी वर्ष महाराष्ट्र में बलात्कार के 2,496 मामले दर्ज किए गए। NCRB के अनुसार वर्ष 2021 में असम में रेप के 1,733 जबकि दिल्ली में रेप के 1,250 केस दर्ज किए गए थे। NCRB की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध और दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों की वजह से राजस्थान रेप के मामलों में बीते 3 वर्षों से पहले नंबर पर है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म जैसे शब्द शायद सियासत के शब्दकोश में होते ही नहीं, क्योंकि और क्यों नहीं होते ये समझाने के लिए आपको राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। ये बयान वैसे तो कुछ महीने पुराना है, लेकिन आज इसे आपको फिर सुनना चाहिए।
मामले में हम नंबर एक पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये है नंबर एक। नंबर दो पे था उत्तर प्रदेश, नंबर तीन पे है एमपी, नंबर चार पे महाराष्ट्र।
जरा सोचिए, जिन आंकड़ों पर सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए था, वो आंकड़े राजस्थान के मंत्री महोदय के लिए मर्दानगी का प्रतीक हैं। सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रेप और रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अपराधी लड़कियों की रेप के बाद हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है। उन्होंने क्या कहा था, आज आप फिर से सुनिए।
रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों ने जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी जरा मिलेगी। अबे 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 कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी जरा मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगती बच्चों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी घर मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते और हत्या भी कर देते बच्चों की।
हालांकि भीलवाड़ा की घटना सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, और इसीलिए अब बीजेपी गहलोत सरकार पर ही नहीं कांग्रेस पर भी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, आपको ये भी जरूर सुनना चाहिए।
जब जिस व्यक्ति को जिस सरकार को जिम्मेदारी दी हो संरक्षण की, उनकी एक ही प्राथमिकता हो कि हमारी कुर्सी बची रहे, हम सुरक्षित रहे, तो उनसे और उम्मीद क्या करें। मुझे तो शर्म आती है ऐसी घटनाओं से सुन, दिल व्यथित होता है उस बेचारी बच्ची का, और न जाने ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। जब एवरेज आंकड़ा आपका 17 आ रहा है प्रति दिन, किस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये तीन के अलावा राजस्थान में कुछ और है क्या? पिछले 4.5 साल से यही है, इनकी सत्ता का समय सारा खत्म हो जा रहा है, लेकिन ये अपनी धुन के अंदर
महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं, आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है, ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। क्या इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा इन महिलाओं ने, ये नाबालिग बच्चियों ने, जो लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं।
ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ, ये वही भीलवाड़ा है जहां स्टाम्प के ऊपर बैठियों को बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चुपके हुए हैं? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली।
इस प्रकार की घटनाएं गहलोत साहब के शासनकाल में हर सप्ताह आकार लेती है, और गहलोत साहब है कि अब तुलना करते हैं ट्वीट करके आसाम की तुलना करते हैं कि वहां से दुष्कर्म ज्यादा है, राजस्थान में कम है, गुजरात की करते हैं, कि ये घटनाएं ये बता रही है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है।
भीलवाड़ा की ये घटना बुधवार यानी कल की है, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से देर शाम तक इस घटना पर कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर मनोहर लाल सरकार पर तो सवाल उठाए, लेकिन भीलवाड़ा पर एक शब्द नहीं लिखा। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी जरूर सुनना चाहिए।
पूरे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा गए, इतनी जल्दी घबरा गए हैं, जिस प्रकार वो भाषा काम दे रहे हैं। मणिपुर के साथ में राजस्थान को और छत्तीसगढ़ क्या तो करता है, मैं प्रदेशवासियों से पूछना चाहूंगा आपको कैसा लगा क्या मणिपुर में ना रेप की घटना हुई है, जो मुख्यमंत्री कह रहा है वीडियो तो एक का आया है, नग्न और दो महिलाओं को घुमाया गया और फिर एक कर दिया गया, वो कह रहा है मुझे क्या पूछो, वीडियो में वो कह रहा हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ, इंटरव्यू में आप मुझसे कह रहे हो एक की घटना बता रहे हो, एक पॉजिटिव रेप हुए होंगे, लेकिन आप में कुछ नहीं है, हजार को एफ आई आर गई होगी। उस राज्य ने कंप्लेन करना राजस्थान को, आप सोच सकते हो मेरे में क्या बीति होगी, राजस्थान वालों में क्या बीति होगी। आप हमारे प्रदेश में बदनाम कर रहे हो, यदि आप रेप फ्री हो रहे हो, हर राज्य में रेप भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, राजस्थान में सरकार कार्रवाई होती है, एफ आई आर कर रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। दो घंटे में एटी मिनट लगे थे जोधपुर के अंदर, दो ढाई घंटे पकड़ लिए तीनों बच्चों को, वो तो इन भारतीय जनता पार्टी के खंड नहीं बैठे एजेंसी वाले, उनके ये निकाल थे वो पकड़े गए हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ट्विटर वॉल का भी यही हाल रहा। बात कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान की थी, इसीलिए उनकी तरफ से भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भिलवाड़ा पर विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता भी खामोश हैं। इनमें से किसी को भी इतना वक्त नहीं मिला कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध पर आवाज उठाएं। इनकी ये चुप्पी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि ये नेता मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी के मुद्दे पर काफी एक्टिव हैं और केंद्र सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से सवाल पूछने की दिलेरी नहीं दिखाई। इसकी वजह आप भी जानते हैं और इस वजह का नाम है सियासत। वो सियासत जो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नेताओं को सिलेक्टिव बना देती है। वो अपनी सुविधा अनुसार तय करते हैं कि उन्हें कब और किस घटना पर प्रदर्शन करना है और किस घटना पर चुप्पी साध लेनी है। यही सिलेक्टिव अप्रोच महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हमारे नेता वाकई महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें ये सिलेक्टिव अप्रोच छोड़नी होगी और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी जुटानी होगी, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों। अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके लिए ये मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस मुहावरे का अर्थ है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वही सत्य है और उसे किसी भी सबूत की कोई जरूरत नहीं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष हमेशा यही दलील देता है कि ज्ञानवापी में साफ दिखाई देता है कि वहां प्राचीन मंदिर था और इसे साबित करने के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब उस सच को एक पक्ष मानने से इंकार कर दे। इसीलिए ज्ञानवापी परिसर के सच को सामने लाने के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब हम बिना किसी भावना में बहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का फैक्चुअल और साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सार पता हो और ये पता हो कि हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का फैसला किस आधार पर सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्याय के लिए ASI का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने ASI से कहा कि सर्वे कीजिए लेकिन बिना खुदाई किए। और इस तरह अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें ASI को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी गई थी और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वे करवाने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार और मस्जिद के नीचे मंदिर की मौजूदगी कोरी कल्पना है, बिना किसी सबूत के ASI सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती, सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत केस सुनवाई लायक है ही नहीं। ये मुस्लिम पक्ष की दलीलें थी जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनाते हैं। सर्वे से संरचना की सच्चाई सामने आएगी। सर्वे ये पता लगाने में मदद करेगा कि क्या हिंदू मंदिर के ऊपर दूसरी संरचना का निर्माण किया गया था या नहीं। सर्वे में मस्जिद की संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही काम होगा। सर्वे होने से सच्चाई सामने आ जाएगी। हाई कोर्ट में एएसआई ने भी स्पष्ट किया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एएसआई और प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
रिटर्न में हमें दे दिया था कि कल से वो शुरू करना चाह रहे हैं। जो भी जिला प्रशासन की ओर से मदद चाहिए वो हम दे रहे हैं।
तैयारियां कैसी सर, अगर बात करें तो क्या क्या मांगा है सर्वे की टीम ने?
तैयारी पूरी है और जो इससे कोर्ट का ऑर्डर है उसके क्रम में जो है।
कितने बजे से सर्वे की शुरुआत होगी? कुछ समय
अभी समय उन्होंने हमें नहीं बताया था।
आज शाम को टीम पहुंचेगी, सर्वे की टीम जो आप यहां पर बता रहे थे कि यहां पर पहुंची नहीं है, कब तक पहुंचेगी और क्या है?
उन्होंने कल के लिए लिखा है, इसीलिए जो है मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक आ जाना चाहिए, तो फिर कल सुबह से तब शुरू होगा।
अब ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे होगा वो कैसे होगा, सर्वे के दौरान क्या क्या होगा और सर्वे में किन बातों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एएसआई के सर्वे में किन किन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। क्या मंदिर को ध्वस्त कर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया था? ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर का मंदिर कब बना था? ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कब से स्थित हैं? ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा संरचना कितनी पुरानी है? हालांकि एएसआई की टीम जो सर्वे करेगी वो ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने और वहां कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब आपको बताते हैं कि एएसआई ज्ञानवापी परिसर में कहां कहां सर्वे करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, मस्जिद के तीनों गुंबद के नीचे और मस्जिद परिसर में मौजूद तहखाना, इन तीनों जगहों पर एएसआई सर्वे करेगा। लेकिन आज हाई कोर्ट ने एएसआई को साफ साफ निर्देश दिया है कि सर्वे के दौरान किसी भी संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ना कोई खुदाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद हमने एएसआई के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल से खास बात की है।
ऐसे में कुछ ऐसी जो कलाकृतियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जाएगी और उनका जो शिल्पगत विशेषताएं हैं उनके आधार पर अपना मत प्रस्तुत करेगी और इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो डीपीआर सर्वे भी किया जा सकता है, जिससे भूमि के नीचे किस तरह के निर्माण हैं उनका पता चल सकता है। तो ये दोनों ही तरीके हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है तो उन इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अयोध्या में मेरे टीम में 52 लोग थे और उस टीम का नेतृत्व मैंने किया और वो रिपोर्ट एक निर्धारित समय में हम लोगों ने हाईकोर्ट में सबमिट की। उस समय स्थिति ये थी कि अयोध्या में मस्जिद या किसी तरह का ढांचा मौजूद नहीं था, एक सिंपल माउंट के रूप में स्थल विद्यमान था और वहां पर खनन का कार्य किया। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है, यहां पर मस्जिद मौजूद है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। उस मस्जिद के पश्चिमी भाग में मंदिर के
रिमेंस दिखाई देते हैं। यहाँ कोर्ट ने एक बात और क्लियर की है कि एएसआई ये सर्वे पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से ही करेगी। तो अब वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल इस सर्वे में होगा ये भी हम आपको बताते हैं। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। जीआरएस यानी जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का भी प्रयोग होगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से वहां मौजूद चीजों की उम्र पता की जाएगी। जीपीआर सिस्टम का इस्तेमाल एएसआई पहले भी पुरानी इमारतों में करता रहा है, जिससे इतिहास के कई सच सामने आए हैं। अज्ञानवापी के सर्वे में भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जीपीआर सर्वे क्या है, जीपीआर सर्वे कैसे होता है। इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने देश के मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सीएस दुबे से बात की। डॉक्टर सीएस दुबे ने एक डेमो के जरिए समझाया है कि इस तकनीक से कैसे ज्ञानवापी में सर्वे होगा, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं।
पूरे देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जीपीआर सर्वे की है, तो वैसे में जीपीआर सर्वे कैसे होता है, किस तरह की विधियों का उसमें प्रयोग होता है, किन किन यंत्रों का उसके अंदर प्रयोग होता है, ऐसे में हम लोग के साथ बात करने के लिए डॉक्टर सीएस दुबे जी हैं, देश के जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के समय वाइस चांसलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में आपका। सर पहले तो अगर हम लोग बेसिक समझाना मतलब समझना चाहें बेसिक में कि जीपीआर सर्वे कैसे होता है, किन किन यंत्रों का उसके अंदर प्रयोग होता है, कैसे उसके नतीजे निकलते हैं, एक बार अगर आप
देखिए। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जो होता है वो एंटीनास होते हैं एक सर्टेन वेव फ्रिक्वेंसीज के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आधारित होते हैं। तो इलेक्ट्रेड जो एंटीनास होते हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम पे कि कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जाती है। तो आपके पास एंटीना जो है वो जैसे बड़ा एंटीना और छोटा एंटीना होता है, एक बड़ा एंटीना होता है 200 मेगाहर्ट्ज का जो कि कम डीप कम पेनिट्रेशन करता है जमीन के अंदर, और जो बड़ा 100 मेगाहर्ट्ज का जो और जिससे बड़े जो एंटीनाज होते हैं वो डीपर जाते हैं। मैक्सिमम डेप्थ जो है किसी भी जीपीआर की 80 मीटर तक है, 80 मीटर तक है। तो मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर, ये देखिए ये मशीन है हमारी, ये 100 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है। आप देख रहे हैं इसके साथ एक ये पहिया लगा हुआ है, ये पहिया और इधर से इसको मूव करने का होता है, इसको एक जना खींचता रहता है और इसके अंदर जो वेव्स इसको ये जो घसीटता है तो उसका जो पूरा सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास आता जाता है। और वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो कंप्यूटर होता है ये टफ बुक है, टफ बुक होती है जो कि मतलब आप कहीं फेंक भी दोगे तो खराब नहीं होगी। तो हार्ड जब आप ऐसी जगह काम कर रहे हो तो आपको हार्ड बुक चाहिए। तो ये सैर का कंप्यूटर है और इसमें ये टफ बुक है, इस टफ बुक के अंदर जो है ये वेव्स की सारी, तो ये 200 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है आप देख रहे हैं, और ये जो है आपका 100 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है जिसमें ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होती है, ये आपके ऑप्टिकल ट्रांसमीटर फाइबर्स हैं जिससे मैं इसमें जाता है डाटा, और इसके अंदर डाटा जाने के बाद जो है वो डाटा जो है हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सायर का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसी सायर सॉफ्टवेयर में पूरी हमारे पास क्रॉस सेक्शन आता जाता है, जैसे जैसे चलता जाता है उस पूरे एरिया का हमारे पास पूरा नीचे का जितनी डेप्थ तक जा सकता है। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर तो मैंने आपको दिखा दिया, ये एंटीना आपने ऊपर देखा था, ये ऊपर था ये बड़ा वाला एंटीना, ये चौड़ा चौकोर एंटीना, ये 200 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है, ये कंप्यूटर मैंने बताया टफ बुक जिसे बोलते हैं वो है, और ये जो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर ये है। अब ये इसका पूरा अगर आप प्रोसेस देखो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर गई और ये बाहर उसका डिसिपेशन निकला। तो ये जो ये ट्रेस आपको जो नजर आ रहा है इस तरह का ट्रेस आता है, फिर वो हमारे पास दो तरह के ट्रेसेस आते हैं और इन ट्रेसेस को जो है हम जैसे यहां देखिए, पहले हम लोग ये ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसमिट हुई, ये रिसीव हुई, ये रिसीव जो कंप्यूटर में रिसीव हो जाती है, जो आता है डाटा इस डाटा के साथ जो रिकॉर्डेड के साथ ट्रेसेस आ जाते हैं ये, और ये ट्रेसेस दो टाइप में आते हैं और इनका फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये काम था इसी तरह से। अब आप देखिए ये कुछ लोगों ने इसी लोगों ने जैसे पेरियार रिवर पे काम किया हुआ है, तो ये पॉन्ड है एक, उसको पॉन्ड को जैसे मैंने बताया ये पॉन्ड ढूंढा उन्होंने, और ये जीपीआर प्रोफाइल दी कंटेमिनेशन साइट के लिए, तो जो साइट जहां कंटेमिनेशन है उसके लिए इन्होंने यहां पे ये प्रोफाइल खींची। तो इसकी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, तो उन्होंने प्रोफाइल बनाई और इस प्रोफाइल के ऊपर अगर आप देखिए तो ये इन्होंने इस पे सर्वे करके इसको कंटेमिनेट जोन को आप देख रहे हैं वैसे सब सीबीए, यहां पे थोड़ा सा पर्टर्बेशन आ रही है और ये जो पर्टर्बेशन आई इसकी एक्चुअल फोटोग्राफ जो है जब खुदाई की तो ये है।
अच्छा,
ये लीकेज थी इसके अंदर पानी की, ईटीपी की और एंडोसल्फिन प्लांट की, एक प्लांट था उसकी लीकेज थी वो इसके अंदर डंप हो रही थी। तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक चीज है। तो एंडोसल्फीन और तो ये लीकेज से जो भी मटेरियल बताया था, नेचुरल है ये कम सॉइल लूज है, तो आपको बता दिया उसने अपने डाटा से कि भाई इस तरह से। इसी तरह से आप यहां देखिए, ये देख रहे हैं आप लाइन, अब ये लाइन जो है ये पाइप्स हैं।
अच्छा,
तो ये पाइप्स को इसने बता दिया कि भाई ये पाइप्स हैं यहाँ पे।
जीपीआर को लेकर जैसे हम लोग का एक्सरे होता है शरीर का, तो उस एक्सरे में कहीं पर भी कुछ भी चोट वगैरह हम लोग के मतलब नहीं लगती, स्वस्थ रहते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जीपीआर अगर किसी जगह का भी करा जाता है तो उस जगह को तो किसी भी
कुछ खराबी नहीं होती, क्योंकि ये तो आप जैसे किसी चीज को किसी कपड़े को रेंग रहे हो ना, तो ये उसी तरह से बस आप उसको रेंगते रहते हो। और इसका रेंगना मतलब बड़ा स्मूथ होना चाहिए, जितना उबड़ खाबड़ जगह होगा उतनी जगह इलेक्ट्रॉन उतना ही जो है इसका जो रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। तो ज्यादा स्मूथ एरियाज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको कर लें, रफ एरियाज में भी करते हैं पर बहुत स्लो चलाते हैं। फिर जब आपको जैसे आपका रोड है तो रोड पे आप थोड़ा फास्ट चला सकते हो, लेकिन अगर आपकी यहाँ सॉइल है या मिट्टी है या रॉक्स जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, वहां बहुत धीरे चलाते हो ताकि आपका पूरा स्कैन आ जाए।
ले देखे एक तरह से, अगर आपको किसी भी जगह का अगर आपको एक्सरे चाहिए, आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको जीपीआर देता है। जीपीआर का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन संयंत्रों का प्रयोग करा जाता है, कैसे उसके रिजल्ट आते हैं, ये सारी चीजें सर ने आपको बताई। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सर्वे शुरू होगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन यहां हम आपका ध्यान एक जरूरी बात की तरफ दिलाना चाहते हैं। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का विवाद अब अयोध्या में राम मंदिर वाले रस्ते पर चल निकला है। हिंदू पक्ष को लग रहा है कि जिस तरह अयोध्या में एएसआई सर्वे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था, वैसा ही ज्ञानवापी के केस में भी होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एएसआई के सर्वे की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में जब फैसला सुनाया था, उस वक्त 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है, यह संविधान के बुनियादी मूल्यों की रक्षा करता है। इस कानून के तहत भारत के हर धार्मिक ढांचे को उसी स्वरूप में संरक्षित रखना होगा जिस स्वरूप में वो 15 अगस्त 1947 के दिन था। पहले राम जन्मभूमि और अब ज्ञानवापी परिसर, दोनों ही केस में मुस्लिम पक्ष की दलीलें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही टिकी थी। तो आखिर क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम आपको बताते हैं। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही इनकी जगह कोई नया निर्माण किया जा सकता है। कानून के तहत अगर ये साबित भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के स्थल को तोड़कर बनाया गया, तो भी इसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि राम जन्मभूमि केस में ये कानून क्यों लागू नहीं हुआ, तो इसकी वजह यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा गया था कि यह कानून राम जन्मभूमि केस में लागू नहीं होगा। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि राम जन्मभूमि केस आजादी से पहले ही कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह निर्देश दिया था कि भविष्य में इस कानून को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो फैक्ट यह है कि ज्ञानवापी परिसर विवाद में एक बार फिर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। वो अलग बात है कि हिंदू पक्ष इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है।
जिस धार्मिक स्वरूप की दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार दी जाती है उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ। जो यही इस पूरे केस का केंद्र बिंदु है कि धार्मिक स्वरूप क्या है, मंदिर का है कि मस्जिद का है, और इसीलिए एसआई सर्वे की जरूरत है। और एसआई सर्वे जब होगा तो धार्मिक स्वरूप क्या है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और एसआई की जो रिपोर्ट आएगी वो इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर बनेगी। आज कोर्ट ने मेरे हर एक आर्ग्यूमेंट को इन टोटो मान लिया है, जो अंजुमन इंतजामिया के ऑब्जेक्शन थे कि एविडेंस लीड करने की ये कार्रवाई है, साथ ही साथ इस स्टेज पे एसआई सर्वे नहीं हो सकता, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता।
विष्णु जी, क्योंकि जिला जज का जो आदेश है उसके मुताबिक अब किस किस हिस्से का ज्ञानवापी परिसर में
पूरे हिस्से का वजू टैंक को छोड़ के पूरे हिस्से का एएसआई सर्वे होना है, जो बैरिकेडिंग के अंदर है।
जीपीआर तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं,
जीपीआर टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, सारे टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं
जी। इसके अलावा विष्णु जी एक सवाल और है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है?
बिल्कुल पूरी तैयारी, जैसे यहाँ पे तैयारी थी वैसे वहाँ पे भी हम मौजूद रहेंगे और उनका जवाब देंगे।
एक अंतिम सवाल, राम मंदिर के केस में एएसआई की रिपोर्ट काफी अहम साबित हुई थी, जब फैसला आया था उसमें भी इसका जिक्र था, कि आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद में जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी एक ये अहम कड़ी साबित होगी?
बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब रिपोर्ट आएगी एएसआई की तो बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी केस को डिसाइड करने के लिए।
कोर्ट एक लीगल एस्पेक्ट की जगह बहुत कुछ इस पे चला गया कि एएसआई सर्विस से किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा और जो वास्तविक सच है उसके सामने आएगा। हम लोगों का जो मेनली कंटेंशन ये था कि ये स्टेज नहीं है अभी कि जब साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, लेकिन उस चीज को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और मेनली वो एएसआई के एफिडेविट पे रिलाई किया कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साइंटिफिक सर्वे करने से कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग के साथ आर्गूमेंट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि जो हम लोग का मेन आर्गूमेंट था कि कोर्ट का काम किसी पक्ष के फेवर में इविडेंस क्रिएट कराना नहीं है, जैसा कि प्रयास जिला जज द्वारा किया गया है। तो बहरहाल, दे द जजमेंट अगेंस्ट अस, वी हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, लेट्स सी क्या होता
है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 1991 का फेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर उसकी जगह दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाने से रोकता है, तो फिर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाने की जरूरत क्या है और ये सर्वे करवाने से क्या हासिल होगा? आपकी इस बारे में जो भी राय है आप हमें वीडियो मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588085811। ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। ये भारत की खासियत है कि भारत में हर घर की किचन में कई तरह के मसाले होते हैं। इन्हीं में एक मसाला है हींग। तेज गंध और छोटे छोटे कंकड़ की तरह दिखने वाला हींग खाने का स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस हींग का भारत के घर घर में इस्तेमाल होता है वो भारत में पैदा नहीं होता, जबकि पूरी दुनिया में हींग की सबसे ज्यादा खपत भारत में ही है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हींग की खेती हो रही है। भारत में ये पहली बार हो रहा है। 3 वर्ष पहले यानी वर्ष 2020 में ट्रायल के लिए लाहौल स्पीति के 3 गांव और 7 किसानों को चुना गया था। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड IHBT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने 3 वर्ष पहले हींग का पहला पौधा लाहौल स्पीति में किसानों को दिया था, जिसमें अब बड़ी कामयाबी मिली है। अब सिर्फ लाहौल स्पीति में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, मंडी, चंबा और कुल्लू में भी हींग की खेती हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हींग का 40% भारत में इस्तेमाल होता है। भारत में अफगानिस्तान और ईरान से हींग का आयात होता है। अफगानिस्तान का हींग सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, इसीलिए इसकी मांग भी सबसे ज्यादा है। CSIR के मुताबिक भारत में हर साल 900 करोड़ की लागत का 1500 टन हींग विदेशों से आता है। हींग की खेती का भारत में होना एक बड़ी कामयाबी है। हम सबके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि हींग का इस्तेमाल करीब करीब हर घर में होता है। हींग की खेती होगी तो इसके आयात में भी कमी आएगी और ऐसा होने से इसकी कीमत भी जरूर कम होगी। लाहौल स्पीति के जिन गांव में हींग की खेती हो रही है वहां जी मीडिया संवाददाता ने भी खुद जाकर देखा कि किसानों की मेहनत का क्या फल मिला है। संवाददाता संदीप सिंह ने लाहौल स्पीति से एक रिपोर्ट भेजी है, आप भी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए।
लाहौल स्पीति के ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली, नजारा ऐसा कि मन मोह ले। इन्हीं पहाड़ों के बीच बसा है कवारिंग गांव, जहां देश में पहली बार हींग की खेती हो रही है। यहां किसान दिन रात मेहनत कर हींग के पौधों को उगा रहे हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी बर्फ की सफेद चादर है, ग्लेशियर्स जो हैं इन पहाड़ों पर मौजूद है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात का डिसीजन लिया कि लाहौल स्पीति जो है वो हींग की खेती के लिए उपयुक्त हो सकता है, और इसमें लाहौल के जो है इस गांव को चुना गया जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, और यहां पर 3 साल पहले छोटे छोटे हींग के पौधे यहां पर रोपे गए थे, और उसके बाद अब जो है वो हींग की खेती यहां पर सक्सेस जो है उसमें मिली है।
CSIR और IHBT ने 3 वर्ष पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति में 3 गांव के 7 किसानों को हींग की खेती करने के लिए पौधे दिए थे। किसानों ने पौधे उगाए लेकिन कई चुनौतियों के बाद अब लाहौल स्पीति के सीढ़ी नुमा खेतों में हींग उगने लगा है। जो पौधे किसानों को दिए गए वो अफगानिस्तान के बीज से तैयार हुए हैं। इन्हें पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के लैब में तैयार किया गया है।
आप देख सकते हैं कि 3 साल के बाद जो है वो हींग का ये पौधा कितना बड़ा हो चुका है, और इस वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये ईरानी वैरायटी है। यहाँ पर 2 वैरायटी में पौधे जो हैं वो वैज्ञानिकों ने किसानों को दिए थे। दूसरी तरफ की वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये चौड़े पत्ते वाला जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान की वैरायटी है, यानी अफगानी वैरायटी इसे कहा जाता है। तो दोनों ही वैरायटी जो है वो यहाँ पर सक्सेस कर गई है।
पहाड़ों पर हींग की खेती आसान काम नहीं है, इसलिए CSIR और IHBT ने किसानों को इसे उगाने की ट्रेनिंग दी है। हींग का पौधा गाजर और मूली के पौधों की श्रेणी में आता है। ठंडे और शुष्क वातावरण में इसके पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गुणकारी हींग की खेती ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं।
हम लोग बहुत ही धन्यवादी है IHBT पालमपुर और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किलोंग है, जिन लोगों ने हमें हम साथ कृषकों को चुना, और 3 वर्ष पूर्व हमें ये प्लांटिंग सैपलिंग मटेरियल हमें दी गई थी जो ईरानी और अफगानी जो 2 वैरायटी की थी, और दोनों बिल्कुल सफल कर गई है। आपको मैं खोद कर दिखाना भी चाहूंगा कि कितना इसका रूट वगैरह कितना मोटापा पकड़ लिया है, तो हम आपको थोड़ा खोद कर भी दिखाना चाहेंगे।
बिल्कुल,
किस तरह से ग्रोथ पकड़ लिया है
जी। तो ये कौन सी वैरायटी जो है आप हमें दिखा रहे हैं इस वक्त?
ये वाली ईरानी वैरायटी है। तो इस तरह से देखिएगा, ये रूट्स काफी मोटा पकड़ गया और इसमें पूरा हींग की पूरी खुशबू आ गई है।
बिल्कुल,
तो इस तरह से ये काफी ये 3rd ईयर का प्लांट है, 5th ईयर में ये फसल देना शुरू हो जाएगी।
पौधे उगाने का ये मतलब कतई नहीं है कि हींग मिलेगा। हींग की खेती में सब्र रखना पड़ता है, 5 साल बाद जाकर मेहनत का फल मिलता है। एक पौधे से करीब 0.5 किलो हींग निकलता है और इसमें करीब 4 से 5 साल लगते हैं, इसीलिए हींग की कीमत इतनी ज्यादा होती है।
आने वाले समय में तो सर ये अगर अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं, इससे हमें बहुत ही
अच्छा लाभदायक होगा।
हिमाचल के किसानों ने हींग को समतल और सीढ़ी नुमा खेतों में उगाया, लेकिन समतल खेतों में हींग का पौधा नहीं उगा, जबकि सीढ़ी नुमा खेतों में हींग के पौधे की अच्छी ग्रोथ हुई। सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर के डायरेक्टर भी मानते हैं कि पहाड़ों पर हींग का उगना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
हम लगभग रोज हींग अपने खाने में इसका सेवन करते हैं। इसमें बहुत कई केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सल्फर बियरिंग कंपाउंड, फेरुलिक एसिड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं, और साथ ही ये हमारे खाने को अच्छा स्वाद प्रदान करते हैं। हमारे संस्थान में हींग के ऊपर लगभग 12 साइंटिस्ट अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन से लेके इसकी एग्रोटेक्नोलॉजी, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन सब के ऊपर कार्य हो रहा है।
लाहौल स्पीति की एक पहचान यहाँ होने वाली ऑर्गेनिक खेती से भी है, लेकिन अब लाहौल स्पीति हींग की खेती को लेकर भी अपनी पहचान बनाने लगा है। सिर्फ लाहौल स्पीति ही नहीं, किन्नौर, मंडी, चंबा और कुल्लू में भी हींग की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
देश में हींग की खेती के लिए सबसे पहले हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति को चुना गया, और इसके बाद हिमाचल के अन्य जिलों जैसे किन्नौर, मंडी, चंबा, कुल्लू में हींग के पौधे लगवाए गए। सभी जगहों पे ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, इससे हमें बेहद खुशी है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक हींग हर किचन की शान है। हींग करोड़ों घरों में खाने का स्वाद बढ़ा रहा है। भारत में हींग की खेती होना अच्छी खबर है, इससे किसानों का भी फायदा होगा। आने वाले वर्षों में हींग के आयात में भी कमी आएगी और स्वदेशी हींग से खाने का स्वाद भी डबल हो जाएगा। संदीप सिंह, लाहौल स्पीति, जी मीडिया।
हींग एक ऐसा घरेलू मसाला है जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। हींग असल में फेरुला पोतिदा नाम के पौधे का रस है। पौधे के रस को सुखाकर हींग बनाई जाती है। हींग हर घर का एक ऐसा देसी डॉक्टर है जो हमें बीमार होने से बचाता है। हींग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके फायदे को लेकर किए गए कई शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसमें मौजूद गुण पेट से लेकर डायबिटीज तक की समस्या में बहुत फायदेमंद होते हैं। अब मैं आपको हींग के फायदे के बारे में और बताता हूं। हींग शरीर में वात और कफ को ठीक करता है। ये इंसान के पाचन को ठीक रखता है, यानी खाने को पचाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से गैस की समस्या कम होती है। हींग के लेप को पेट पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। दांत दर्द से भी हींग छुटकारा दिलाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी हींग बेहद काम की चीज है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अरब देशों में भी हींग का इस्तेमाल खाने और दवाई के रूप में होता है। हींग में कई औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए इसे गॉड्स फूड भी कहा जाता है। हींग भी दो तरह का होता है, एक काबुली सफेद हींग और दूसरा लाल हींग। सफेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। कई लोगों को हींग की गंध पसंद नहीं आती। बहुत से लोग इसकी गंध की वजह से इसे खाने में भी नहीं डालते, लेकिन कुछ राज्यों के खाने में हींग जरूर डलता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनने वाले सांबर में हींग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। गुजरात की कड़ी में भी हींग जरूर डलता है। महाराष्ट्र के वरान और बैंगन की सब्जी में भी हींग का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर किया जाता है। अभी तक जो हींग हम सबके घर में इस्तेमाल हो रहा है वो अफगानिस्तान, ईरान से आता है, लेकिन अब भारत में भी इसकी खेती होने लगी है।
बहुत जल्द स्वदेशी हींग आपके खाने का जायका भी बढ़ाएगा और हींग का दाम भी कम हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से आपका ही फायदा। मैंने आपको हींग की खेती के बारे में बताया, हिमाचल में हो रही हींग की खेती पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन अब मैं आपको हींग से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। माना जाता है कि हींग मुगल काल के समय भारत आया था, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान में होता है। कुछ लोग इसे मुगलों से पहले का भी बताते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देश हींग पैदा तो करते हैं, लेकिन उसे तैयार नहीं करते। हींग को तैयार करने का काम भारत में होता है। जर्मनी में हींग का इस्तेमाल खाने में नहीं बल्कि कीड़े भगाने की दवा के तौर पर किया जाता है। जर्मनी के लोगों का मानना है कि इसकी गंध से कीड़े भाग जाते हैं। पौधे से मिलते ही हींग को खाया नहीं जा सकता। इसे खाने लायक बनाने के लिए इसमें एक किस्म का आटा मिलाया जाता है, उसके बाद ही इसे मार्केट में भेजा जाता है। दुनिया के 130 से ज्यादा देशों में हींग की खेती होती है। संस्कृत में इसे हींगू के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में सबसे पुरानी किताब चरक संहिता में इसमें भी हींग का जिक्र किया गया है। तो ये थे हींग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उम्मीद है अगली बार जब आप हींग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर याद रहेगा। डीएनए में अब वक्त एक और ब्रेक का आ गया है। ब्रेक के बाद डीएनए में खबरों का विश्लेषण यूं ही जारी रहेगा।
और सरकार के मुखिया कहते हैं हम सुरक्षा नहीं दे सकते।
हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का ये बयान दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने वाला नहीं है? क्या मुख्यमंत्री का बयान हिंसा भड़काने वालों के समर्थन में नहीं है? क्या हरियाणा में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मनोहर लाल के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है? क्या जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हिंसा की आग में झुलस रहे राज्य के मुख्यमंत्री जब अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बहाना बनाने लगे तो उस राज्य का भगवान ही भला कर सकता है। हैरानी ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन मीडिया पर सवाल उठा सकते हैं और भड़क सकते हैं। मनोहर लाल ने पहले सबको सुरक्षा देने में बेबसी दिखाई और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, मगर जब बयान पर बवाल मचा तो उनकी पूरी सरकार और पूरा तंत्र सफाई देने में जुट गया। हरियाणा का पूरा सिस्टम फैक्ट चेक के नाम पर दावा करने लगा कि मुख्यमंत्री की बात को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। पहले सुनिए सरकारी विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री का सफाई नामा।
बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा ले तो 2.70 लाख आबादी है। अब 2.70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई
अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता।
डीएनए में हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अफवाहों से बचाएं। अक्सर अफवाहों से भरी कुछ ऐसी खबरें भी वायरल होती हैं जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिखती हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। कुछ यही अफवाहें अब नू हिंसा को लेकर फैल रही हैं और हमारा फर्ज है कि हम आपको उन अफवाहों की सच्चाई बताएं। जहां तक हिंसा के मामलों में अफवाह फैलने की बात है तो अक्सर हमने देखा है कि देश में हिंसा के बाद एक खास तरह का ग्रुप एक्टिव हो जाता है जिसमें चार तरह की टीमें होती हैं। पहली टीम वो होती है जो हिंसा में शामिल आरोपियों की धार्मिक पहचान को लेकर अफवाह फैलाती है। दूसरी टीम वो होती है जो हिंसा से जुड़ी तस्वीरों या वीडियोस में हेर फेर करके अफवाह फैलाती है। तीसरी टीम वो होती है जो हिंसा से जुड़े मामलों में असली गुनाहगार को बचाने और निर्दोषों को फंसाने का काम करती है। और फिर चौथी टीम वो होती है जो पकड़े गए आरोपियों को बचाने के नाम पर पुलिस प्रशासन सरकार और मीडिया पर दोष मढ़ती है। नूह हिंसा में भी अब ये होने लगा है। हमने आपको डीएनए में कल दिखाया था कि ब्रज मंडल शोभा यात्रा में पथराव और दंगे की साजिश कुछ दिन पहले से ही रची जा रही थी। हमने आपको कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाए थे जिसमें नूह में भीड़ जुटाकर शोभा यात्रा को टारगेट करने की योजना बनाई जा रही थी। जैसे ही देश की जनता को नूह हिंसा के साजिशकर्ताओं के बारे में पता चला वैसे ही दूसरी टीम एक्टिव हो गई। पहली टीम ने जहां दंगाइयों की धार्मिक पहचान को लेकर अफवाह फैलाई थी वैसे ही अब दूसरी टीम तस्वीरों और वीडियोस में छेड़छाड़ करके अफवाह फैला रही है।
नू हिंसा क्यों हुई? नू हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? नू हिंसा के असली गुनहगार कौन? इन सारे सवालों के जवाब एक तरह और हिंसा के बाद देश विरोधी टूल किट गैंग की साजिश दूसरी तरफ। एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश विरोधी टूल किट गैंग एक्टिव हो गया। हमेशा की तरह उसने आरोपियों की धार्मिक पहचान छिपाने और बदलने का खेल शुरू कर दिया। एक बार फिर उसने हिंसा से जुड़े वीडियोज में छेड़छाड़ की, फिर उनमें अफवाहों का तड़का लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये वीडियो यकीनन आपने भी देखा होगा। ये वीडियो नूह के उसी मंदिर के पास का वीडियो है जिस पर दंगाइयों ने टारगेट करके फायरिंग की थी, वहाँ मौजूद लोगों को निशाना बनाया।
बहुत गद्दार काम भाई।
इस वीडियो का पहला सीन ही ऐसा है जिसकी वजह से अफवाह फैलाने वाले टूल किट गैंग के लिए इसके बारे में झूठ फैलाना आसान हो गया होगा। वीडियो में एक गाड़ी पर भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, उसी के पास एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट और नीली जींस में दिखाई देता है जिसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल नजर आती है। ये वीडियो आगे बढ़ा तो एक और व्यक्ति नजर आता है, इसके हाथ में भी एक ऑटोमेटिक राइफल है। इन दोनों के अलावा कुछ लोग उनके पास खड़े हैं जो पहाड़ियों की ओर इशारा करके दंगाइयों के वहां छिपने की बात बता रहे हैं।
ये भाई सामने उतर देखो, वो उधर पहाड़ी।
इसी वीडियो में खाकी वर्दी वाला सुरक्षाकर्मी भी दिखता है। इस वीडियो को लेकर अफवाह ये फैलाई जा रही है कि ऑटोमेटिक बंदूक शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के हाथों में। अफवाह फैलाने वाला टूल किट गैंग ये जताने की कोशिश कर रहा है कि नूह में जो भी हिंसा हुई उसमें असली अपराधी शोभा यात्रा में शामिल लोग थे जिनके हाथों में तो ऑटोमेटिक बंदूकें थी। लेकिन ये सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि ये पुलिसकर्मी है, ये स्पेशल टीम का हिस्सा था जो दंगाइयों पर काबू करने के लिए वारदात स्थल पर मौजूद थे। इसी वीडियो में ये लोग एक पुलिसकर्मी के साथ भी नजर आते हैं, लेकिन ये हिस्सा अफवाह फैलाने वाले लोगों ने काट दिया। इसी तरह के एक और वीडियो पर अफवाह फैलाई जा रही है। इसमें एक व्यक्ति सफेद शर्ट और नीली जींस में दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति मंदिर परिसर में नजर आता है, उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग भी हैं। वो पहाड़ियों में छिपे दंगाइयों पर फायरिंग करता है। इस वीडियो को लेकर भी यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर में मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति फायरिंग कर रहा था। ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि शोभा यात्रा में शामिल लोग बंदूकों से लैस होकर आए, वो हिंसा चाहते। अफवाह फैलाने वाले टूल किट गैंग ने बड़ी ही सफाई से वीडियो के वो हिस्से हटा दिए जिसमें नजर आता है कि ये लोग उस पुलिस टीम का हिस्सा थे जो मंदिर में फंसे लोगों को बचाने के लिए आई और मंदिर पर हमला कर रहे दंगाइयों पर फायरिंग कर रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में वर्दी वाले और सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी साथ नजर आते हैं।
नूह में जो हिंसा हुई उस हिंसा को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग सादे कपड़े में फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। शुरुआती जो जानकारी आई और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई उसमें बताया गया कि बजरंग दल के लोग यहां पर थे और उनके पास अति आधुनिक हथियार थे और उन हथियारों से उन्होंने यहां पर जो लोग थे वहां पर फायरिंग की और फायरिंग की वजह से कई लोग डर गए, सहम गए और गोलियां भी लगी। लेकिन आज जब ये वीडियो वायरल हुआ जो चीजें सामने आई वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आंख खोलने वाली है और ये बताया जा रहा है कि जो सादे कपड़े में लोग जो फायरिंग कर रहे थे वो दरअसल बजरंग दल के नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाले जो सादे कपड़े में यहां पर पहुंचे थे जब यहां पर पुलिस को जानकारी मिली कि यहां पर लोगों को बंधक बनाया गया है, चारों तरफ से गोलियां चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तब एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह खुद यहां पर पहुंची थी, लोगों को रेस्क्यू किया। हजारों लोग यहां पर फंसे हुए थे, उन्हीं के साथ ये लोग जो सादे कपड़े में लोग थे पुलिसकर्मी वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां से हटाने के लिए फायरिंग की, हवाई फायरिंग की और भीड़ को, हिंसक को जो दंगाई थे उन्हें हटाने की कोशिश की, जिसके बाद जो लोग यहां पर मंदिर में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।
नू हिंसा के मामले में टूल किट गैंग पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाने लगा है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस निर्दोषों को पकड़ रही है जबकि सच्चाई ये है कि सीसीटीवी फुटेज, पीड़ितों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नू हिंसा के मामले में अब तक 7 लोगों की जान गई है। अभी तक नू हिंसा को लेकर कुल 93 FIR दर्ज की गई है और 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के इस मामले में अकेले नूह में ही 46 FIR दर्ज हैं और 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से गुरुग्राम में 23 FIR दर्ज की गई हैं और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेवाड़ी और फरीदाबाद में भी 3-3 FIR दर्ज हैं। इसके अलावा पलवल में 18 FIR दर्ज की गई हैं जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के बाद पुलिस सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे, इसीलिए अब हरियाणा पुलिस कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरत रही है। पुलिस ने आज कई आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया। हालांकि पुलिस पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो निर्दोषों को पकड़ रही है, इसीलिए हमने पुलिस की इस कार्रवाई और हिंसा के हालात पर हरियाणा की ADGP ममता सिंह से बात की।
सोशल मीडिया पर लगातार आप लोग नजर बनाई है, 3 अलग FIR भी दर्ज हुए हैं जिसमें से तमाम URL नंबर मिले, उसे किस तरीके से देख रहा है? और जो SIT टीम का गठन हुआ है, लगभग 10 SIT टीम का भी आप लोगों ने गठन किया, वो कैसे फंक्शन कर रही है और कब तक स्थिति सामान्य होने की?
देखिए, जो स्थिति सामान्य वाली बात है मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे प्रयास स्थिति को बिल्कुल नॉर्मली सी बहाल करने के जितनी जल्दी हुआ, इसी वजह से हमने आज कर्फ्यू में ढील आज भी दी है, कल भी ढील दी थी। स्थिति प्रयास का तो यह है कि जल्दी से नॉर्मल हो जाए। जहां तक आपने SIT और सोशल मीडिया की बात की हुई है, सोशल मीडिया पर हम लगातार नजर बनाए रख रहे हैं और ये भी एक हमारी जांच में यह भी एक लीड है और एक हिस्सा है और इसमें इस बात देखा जा रहा है कि कहीं ये सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो नहीं ये हुआ या ये एकदम से आकस्मिक था, तो उस दिशा पर भी जांच का ये हिस्सा रहेगा।
मैम, एक महत्वपूर्ण बात और भी सामने आई कि लोग पहले से तैयारी कर रखे थे, जिस तरीके से हथियार उनके पास थे, पत्थर थे, छतों पर चले गए, पत्थरबाजी शुरू हुई। और क्या जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, क्या इसका परमिशन लिया गया था और कितनी संख्या के लिए? कुछ
शोभा यात्रा की बिल्कुल परमिशन ली गई थी 26 तारीख को, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ प्रशासन की मीटिंग हुई है और ऑर्गेनाइजर से उस मीटिंग के तहत जो उन्होंने एक संख्या का अनुमान दिया था 3000 से 3200, लगभग उसी अनुमानित संख्या के अंदर ही शोभा यात्रा में जो आए थे शामिल होने वही संख्या के आसपास थी। परमिशन थी और पूरा सब कुछ एक जो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ जो होना चाहिए उस तरह से था। और ये कोई पहली बार शोभा यात्रा नहीं निकली है, शोभा यात्रा पहले भी 2 सालों में निकली गई है और हर बार पीसफुली ही इसको मेंटेन किया गया है। रही उसकी बात हापथाव की घटनाएं मेवात में कोई पहली बार नहीं हुई, अक्सर वहाँ पर मेवात में पथराव की और इस तरह की घटनाएं पीछे भी होती रही, परंतु हाँ इस बार जिस तरह से लार्ज स्केल पर एक वेपन यूज किया गया, असला का प्रयोग और फायरिंग हुई है, इसके नजर से एक इन्वेस्टिगेशन में चीज को भी देखा जा रहा है कि क्या ये पहले से सुनियोजित एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ था या ये क्या परिस्थिति थी, ये एक जांच का विषय है।
कुछ हथियार भी बरामद हुए, क्या पता चला किन हथियारों से फायरिंग हुई, कितनी राउंड फायरिंग हुई?
जी ये जांच का विषय है और ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स कर रही है, इस बारे में एसपी मेवात जो है समय समय पर आपको सूचना देते रहेंगे। इस वक्त मेरा कुछ भी कहना इन्वेस्टिगेशन को बाधित करेगा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी इस पर।
मैम इंटरनेट सेवा भी 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है, क्या लगता है कि इसे और भी किया जाएगा, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर एक डर है, खौफ है, दुकानें बेशक आपने ढील दी है, दुकानें नहीं खोल रही हैं, हमने आज भी देखा जो मजदूर वर्ग है वो पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह पर क्योंकि उनके पास खाने का राशन नहीं है।
नहीं, इन्हीं सबको देखते हुए जल्दी से एक शांति बहाली करने का प्रयास है और ये जो कर्फ्यू में ढील देना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाती जाती है नॉर्मलिटी ताकि जल्दी रेस्टोर हो। और ये तो पुलिस है तो प्रतिबद्ध है हम लोगों में ये कॉन्फिडेंस विश्वास उत्पन्न करने में कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आप आइए अपना दैनिक जो भी कार्यकलाप उसको कीजिए, हम आपके साथ हैं।
हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को पुलिस बख्शना नहीं चाहती, इसीलिए 71 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया है। नो हिंसा हरियाणा के पुलिस प्रशासन पर सवालिया चिन्ह, यही वजह है कि अब पुलिस दंगाइयों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नो हिंसा की सुनियोजित साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले वीडियोस की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी में दिखने वाले हर व्यक्ति को ट्रेस किया जा रहा है। अब हम आपको नू हिंसा से जुड़े कुछ नए वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। इसमें कई घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि शोभा यात्रा पर हमले के लिए योजना कितनी पक्की बनाई गई थी। नू हिंसा से जुड़ा ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शोभा यात्रा में शामिल एक बस के पीछे कुछ लोग चल रहे हैं और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। इसी तरह का एक और वीडियो है जिसमें शोभा यात्रा होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। आपने गौर नहीं किया होगा लेकिन इस तरह के वीडियोस के जरिए शोभा यात्रा में आने वाले लोगों को भी अलग अलग इलाकों से ट्रैक किया जा रहा था। मुमकिन है कि इन लोगों की लोकेशन कुछ खास लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई जा रही थी।
ये देख लो भाई, टोल टैक्स का पाकड़ वाले का।
इसके अलावा हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो शोभा यात्रा पर हुए हमले का है। हिंसा वाले दिन करीब 12 बजे नू शहर के दंगाई होटल चौक पर इकट्ठा हुए। इसी हाईवे पर वो करीब 2 किलोमीटर दूर तिरंगा पार्क की ओर जाने लगे थे। होटल चौक की तरफ बढ़ते वक्त दंगाई केवल 20 या 25 की संख्या में ही थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। तिरंगा पार्क के पास शोभा यात्रा पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो है जिसमें बड़ा सा तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा। इस हाईवे पर बाई ओर से शोभा यात्रा की गाड़ियां आ रही थी। जब ये यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची तो यहीं पर दूसरी तरफ से तैयार बैठे दंगाइयों ने हमला कर दिया। हमले की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें दंगाइयों की संख्या 20-25 नहीं बल्कि सैकड़ों में नजर आ रही है। दंगाइयों से बचने के लिए शोभा यात्रा में शामिल लोग वापस भागने लगते। जो गाड़ियां दंगाइयों के हमले में फंस गईं, उनमें तोड़फोड़ की गई और जो लोग दंगाइयों के हत्थे चढ़े उनके साथ मारपीट की गई। जो दंगाई होटल चौक से तिरंगा पार की तरफ निकले थे उनकी अगुवाई पंजाब नंबर की एक कार कर रही थी। इसकी एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में दंगाइयों के चेहरे भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब हम आपको नूह हिंसा के कुछ और वीडियोस दिखाते हैं। इनमें योजना बनाए जाने, उस पर अमल करने और फिर हमले के बाद खुशी का इजहार करने वाले लोग नजर आएंगे।
ये देखो भाइयों, पहाड़ों में करा रहे हैं ये। ये देखो कितने पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। काफी सारी हमारी गाड़ी फूट गई है ये देखो, और इधर पहाड़ों में वो खड़े हुए सामने, इधर ये देखो, इधर से मंदिर पे चढ़ रहे हैं, फिरोजपुर नूह वाले नल्लड़ मंदिर पर, शिव मंदिर पर काफी सारी गाड़ियों में आग लगा दी है।
तो उड़ाएंगे तो तू तेरी जिंदगी में लाश आता है गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई,
रोड पे
ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार होश माजा और नसर जुनेद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। कितने तम बजरंग वाले
न्यून ने एक बार फिर से अपनो एहतियात जगा दियो है और जिनका मुंह फट रहा है उनको मुंह बंद करवा दियो है। और भाई आज तो मजो आगो है, आज तो भाई मैं कह रहा हूँ मजो आगो। और जो ये नारा लगाने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यकीन कर या तो भाई सीना ने छोड़ो होगा हमारा सही। अब पतो लग रहा कि म्यो होता और हिंदुओं सुन लो, ये म्यो हाँ हल्का में बहुत ले रहा था मैंने। अब आओ सामने, सामने आके लड़ना की तुम्हारी हिम्मत ना है। अब ला रहा पुलिस से और वन ने पापा चले और पुलिस वाला ने ना देख रहा भाई।
नूह में जो हिंसा हुई उससे जुड़े सैकड़ों वीडियो सबूत हमने आपको दिखाए। हमने आपको हिंसा की ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जो शायद पुलिस की जांच में भी काम आए। ये सच है कि पुलिस सीसीटीवी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों के जरिए दंगाइयों को पकड़ रही है, लेकिन नूह हिंसा में एक व्यक्ति का नाम छाया रहा। इसे एक पक्ष हिंसा की वजह बता रहा है और यही पक्ष इस व्यक्ति को हिंसा का मुख्य आरोपी भी घोषित करना चाहता है। वो व्यक्ति है मोनू मानेसर। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी की अफवाह से ही हिंसा भड़की। हिंसा का इससे बड़ा तर्कसंगत समर्थन शायद ही कभी दिया गया हो। बहुत से लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अक्सर दंगाइयों का समर्थन करने वाले लोग किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर दंगाइयों का समर्थन क्यों करते हैं। नूह हिंसा के लिए मोनू मानेसर को वजह बताया जाने लगा है। उदयपुर के कन्हैया लाल और पुणे के उमेश कोहले की हत्या और उस दौरान कई शहरों में हुई हिंसा की वजह नुपुर शर्मा को बताया गया था। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए CAA NRC को जिम्मेदार बता दिया गया था, जबकि वर्ष 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या के समय ईस्ट निंदा को वजह बता दिया गया था। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण हैं, जिसमें हत्या और दंगाइयों को बचाने के लिए कोई ना कोई वजह बताई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल देश में 400 से 800 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। वर्ष 2017 में सांप्रदायिक हिंसा की 723 घटनाएं हुई थी। इसी तरह से वर्ष 2018 में 512, वर्ष 2019 में 438, वर्ष 2020 में 857 और वर्ष 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के 378 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या लोगों की हत्या करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और देश की शांति को खतरा पैदा करने वालों को सांप्रदायिक हिंसा के आरोपों से फिजूल तर्कों से बचाया जाएगा? क्या किसी की मौजूदगी दंगा करने का टिकट है? क्या किसी का बयान देश में हिंसा करने का लाइसेंस है? क्या विरोध के नाम पर हिंसा ही एकमात्र रास्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के कुछ लोग हिंसा के लिए ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं? आज हमने नूह हिंसा की वजह बताए जा रहे मोनू मानेसर को ढूंढ निकाला। हमने उससे कई सवाल किए और मोनू मानेसर ने उन सवालों के जवाब भी दिए। चलिए हम आपको नूह हिंसा की वजह बताए जा रहे मोनू मानेसर के जवाब आपको सुनवाते हैं।
पोस्ट क्योंकि मेरी आज तक की मेरे जितने अकाउंट है सभी अकाउंट की मैं शेयर कर दूंगा। आज तक 2009 से लेकर कोई भी मैंने विवादित पोस्ट डाली हो, किसी के मजहब के खिलाफ लिखा हो, हाँ मैं गो तस्कर पकड़ता हूँ। मैंने कभी ये नहीं लिखा मुस्लिम गो तस्कर, मैंने लिखा गो तस्कर। गो तस्करों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, मैंने पकड़े फिर भी क्यों? मेरी वजह से कुछ नहीं गुजरी। अपने मंदिरों पे नहीं जा सकते क्या? हम पाकिस्तान में बैठे हैं क्या? हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम अपने हिंदुस्तान में आजाद है, यहाँ पे भारतवर्ष है, कहीं पे भी कोई जा सकता है क्या? मेवात में मैं जा नहीं सकता क्या? अपने मंदिरों पे जा नहीं सकता क्या? हमारे हिंदू रहते हैं उनके पास जा नहीं सकता क्या? उसमें मैंने किसी व्यक्ति का विशेष का तो नाम लिया नहीं, मैंने अपने उनके धार्मिक जो मेरे दोस्त थे, मेरे मतलब बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे मैंने कहा कि मैं बजरंग दल की एक यात्रा है उसमें आऊंगा। मेरे अधिकारियों ने रोका, कोई इनपुट था उनके पास कि आप जाओगे तो आपके जान को खतरा है या कुछ भी हो सकता? पुलिस अधिकारी से मेरा कोई संपर्क नहीं है जी, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी, उनके पास कुछ भी हो उन्होंने कहा कि आप मत जाना जी, हम जा रहे हैं। एक ASP जो मैडम है वहां पे, उनका एक दिन पहले एक YouTube पे एक बयान है, उन्होंने पहले कह दिया कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है, उन्होंने पहले ऑलरेडी मीडिया में जवाब दे दिया, फिर भी क्यों? एक दिन का प्लान नहीं है, इतने पत्थरों के डंपर खड़े करना, इतनी गोलियां इकट्ठा करना, इतनी गोलियां चलाना, इतने इकट्ठी भीड़। एक FIR में मैंने न्यूज के माध्यम से देखा, उसमें सीधा लिख रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो हथियार लेके आ रहे हैं और सीधा पुलिस पे फायर कर रहे हैं। ये कौन सी है मोनू व्यक्ति विशेष? मोनू मानेसर से उनकी लड़ाई है तो मोनू मानेसर को मारो, पुलिसकर्मियों पे क्यों गोलियां चलाई गई? नाम लगा दिया, मैं दोषी हूं तो मेरे से ज्यादा दोषी वहां के विधायक हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं आपके न्यूज से सभी देख रहे हैं, मैं दोषी हूं तो वो वहां के विधायक भी दोषी हैं जो 4 महीने पहले से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट डाली कि मेवातियों इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ जी क्या मामला है? मैंने तो कभी नहीं डाली कि मैं इस लड़ाई में, चलो मेवात चलो, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। वहां के लोगों ने जो वीडियो चलाई, वो वहां के जो छोटे छोटे यूट्यूबर है, छोटे छोटे फेसबुक है, उन्होंने वो वीडियो डाली मेरी 2022 की डाली, मोनू मानेसर आ गया है कर दो हमला। बताओ क्या बात है? हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गौमाता की रक्षा कर रहे हैं, इसमें गलत क्या कर रहे हैं जी। ये जितना भी मीडिया चल रहा है, एक ही वीडियो को वीडियो विलन बना दिया, बताओ उसमें कोई वीडियो में कोई गलत चीज है क्या? आगे न्यायालय भी है, न्यायालय में भी हम भी जाएंगे उस वीडियो को लेकर कि इस वीडियो में जी हमने गलत क्या कहा है।
यहां हम एक बात और कहना चाहते हैं, मोनू मानेसर जैसे लोग जो गो रक्षा के नाम पर कुछ भी करने की बात कहते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि गो रक्षा के मामले में उन्हें कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। गो रक्षा के मामले में कानून का उल्लंघन करने के बजाय मोनू मानेसर जैसे लोगों को पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, जैसे वो अब नू हिंसा के मामले पर कर रहे हैं। और अब डीएनए में वक्त है पॉजिटिव न्यूज का। ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने इमर्जिंग मार्केट यानी उभरते हुए बाजारों की लिस्ट में भारत को पहले पायदान पर रखा है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए भारत ने 6 अंकों की छलांग लगाई है और दक्षिण कोरिया, यूएई, चीन और ताइवान जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये खबर इसलिए भी और अहमियत रखती है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इसी लिस्ट में चीन और ताइवान की मार्केट्स की रेटिंग घटाई है। और कल ही ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई थी, यानी 24 घंटे के अंदर ही जहां दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग्स घटाई, वहीं भारत इस लिस्ट में शीर्ष पर आया है। मतलब साफ है, भले ही पूरी दुनिया में कमर तोड़ महंगाई, आर्थिक मंदी और युद्ध का माहौल हो, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। और अब आज का प्रेरक विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।